ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ये ऋग्वेद का पांचवें मंडल 83वां सूक्त और पांचवां मंत्र है, यजुर्वेद में भी मिलता है, 30th अध्याय 30th चैप्टर तीसरे मंत्र के रूप। तो पहले हम इसके शब्दार्थ को समझते हैं। संस्कृत में जो मंत्र होते हैं उनके ऑर्डर फिक्स नहीं होता, जैसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं उसके एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब लास्ट में आता है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर वर्ड अपने आप में पूरा है, तो वो आप किसी भी ऑर्डर से आप उसको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब भी हम किसी संस्कृत के सेंटेंस को या श्लोक को, मंत्र को पढ़ते हैं, तो पहले उसको जिस ढंग से हमारी ट्रेनिंग है लैंग्वेज को पढ़ने का, उस ऑर्डर में लाते हैं कि जिसमें लास्ट में वर्ब आए, फर्स्ट सब्जेक्ट आए, बीच में ऑब्जेक्ट आए, उस तरह के। तो ये एक ऑर्डर है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ये ऑर्डर है, हे देव सविता, देव और सविता बीच में, हे देव सविता या सविता देव, विश्वानी दुरितानी, जितने भी दुरित कहते हैं पाप, वाइसेस, गलत आदतें, गलत चीजें, विश्वानी मतलब सारी, जितने भी बुरी आदतें, बुरी बुरे सोच, बुरे विचार हैं मेरे पास, उन सबको परासुभ आप हटा दीजिए। और यत भद्रम, जो कुछ अच्छा है, नाइस है, गुड है ना, वो सब तक, वो सब ना हमारे प्रति आशुभ भेजिए। इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखिए, हे देव ईश्वर सविता, परमात्मा को सविता कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी डिस्कस करेंगे। विश्वानी, विश्व के दो अर्थ हैं, जो हिंदी में आप नॉर्मल विश्व जानते हैं, विश्व मतलब यूनिवर्स, वर्ल्ड, संस्कृत में भी विश्व वर्ल्ड को बोलते हैं, पर विश्व शब्द प्रोनाम के रूप में भी यूज होता है, जिसका अर्थ होता है सारे, मतलब जिसकी दूसरा सिनोनिम है सर्व, सब। तो जितने भी दुरित हैं, वाइसेस मेरे हमारे अंदर हैं, उनको ड्राइव आउट करने में हेल्प करें। और वट एवर यत, जो भद्रम, जो भी अच्छा है, ऑस्पिशियस है, गुड है, तब वो सब ना हमें भेजिए या दीजिए। तो पहला चीज है कि हे प्रभु सविता, मेरे अंदर जो भी कमी, यहां मेरे नहीं, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्षमता दीजिए, एबिलिटी, और जो अच्छी चीज दुनिया में कहीं भी मिलता है हमें देने दीजिए। तो शब्द जो है देव, देव शब्द पर हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार चर्चा किया है। तो देव का अर्थ जो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन है, दानादवा, दीपनादवा, द्योतनादवा, जो भी कोई हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है वो सब देवता है। वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी, मतलब वो इनसेंटिएंट भी हो सकता है या सेंटिएंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमारे माँ बाप, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, परमात्मा। तो हे देव सविता, तो जब हम सविता कहते हैं तो जनरली आम लोग सविता से सूरज का अर्थ लेते हैं, क्योंकि सविता सूरज, सूरज का भी एक दूसरा नाम सविता है। क्यों? सविता का जो अर्थ है वो बड़ा सुंदर अर्थ है, जिसके कारण आप सूरज को भी सविता कहते हैं। सविता का अर्थ होता है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। सविता का जो धातु है सून धातु, प्रसवने, इसका अर्थ होता है पैदा करने वाला या प्रेरित करने वाला। तो जो होता है ना, जब माँ बच्चे जन्म देती हैं, उस प्रक्रिया को भी हम प्रसव कहते हैं, प्रसव, सव, वही सव जो सविता में है। तो पैदा करने वाला प्रसविता व प्रेरिता व, और दूसरा सव धातु का, सु धातु का अर्थ होता है जो इंस्पायर करता है, जो इंपेल करता है, जो इंस्टिगेट करता है, जो स्टिमुलेट करता है, उसको भी हम सविता कहते हैं। तो सूरज भी तो सृष्टि का कारण है, अगर सूरज ढक जाए एक महीने दो महीने तक सूरज उगे नहीं तो देखिए क्या हालत हो। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, ये जो डायनासोर है कैसे नष्ट हुए, वो कहते हैं कोई स्पेस से गिरते हैं जो एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड गिरने के कारण इतने जोर से धरती पर गिरा जिसके कारण धरती से जो धुआं या जो दूसरी चीजें उठे, तो सूरज कितने सैकड़ों सालों, कितने सालों तक धरती पर प्रकाश नहीं दिया, जिसके कारण वेजिटेशन, प्लांट्स सब नष्ट हो गए, जानवर भी जो लिविंग बींग है सब नष्ट हो गए, इंक्लूडिंग आपके जो डायनासोर्स होते हैं। तो इसका मतलब सूरज की किरण ना मिले, ना दिन होगा, ना कोई पानी हो, कुछ भी तो नहीं, सब अंधेरे में रहेगा। और ये उसकी क्रिएशन में उसकी रोल है डेफिनेटली। और दूसरी चीज है कि सूरज प्रेरिता भी है, इंस्टिगेटर भी है, स्टिमुलेट भी करता है। रोज सुबह होता है, सिर्फ हम ही नहीं उठते हैं, तो दुनिया के सारे कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव पशु पक्षी हैं जैसे वो ऑल्स वगैरह होते हैं ना, उनको छोड़ करके सारे के सारे सुबह ही उठते हैं। इंसान तो कभी कभी उठता है, नहीं उठता है, आलसी है, पर सब सब पशु पक्षी सुबह होने के साथ अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सूरज तो है ना इंस्पायरर, काम करने के लिए प्रेरित करता है आपको, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही है इंस्टिगेट करता है, इसीलिए सूरज को सविता कहा जा सकता है। पर सूरज जैसा दुनिया में करोड़ों तारे हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सूरज इटसेल्फ एक इंसेंटिएंट है, वो कहां से वो इंस्पिरेशन लेता है, वो पावर लेता है टू मोटिवेट, वो परमात्मा है, वो परमात्मा सविता है जो सूरज चांद धरती आकाश हवा पानी सबके अंदर मोशन दे रखा है, सबको प्रेरित करता है, सबको चलाता है, सबको पैदा करता है, वही संसार का पैदा करने वाला है और स्टिमुलेट भी करने वाला, वही तुम्हारे अंदर जो कुछ भी, वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकड़ा हो, में हमारे अंदर जो विजडम है, जो बुद्धि है, जिस तरह हम एक्ट करते हैं, ये हमारी अपनी नहीं होती। इंसान वैसे ही करता है कि देखो हम बड़े बड़े साइंटिफिक कारनामे करते हैं, इंजीनियरिंग में देखो हमने कितना मिरेकल किया है, किया है, पर अकेले नहीं किया, पक्षी भी करते हैं इंजीनियरिंग का काम, वो भी अपना नेस्ट बनाते हैं ना, घोंसला, हर पक्षी की अपनी घोंसला होता है, पता है, एवरी बर्ड इज ओन वे ऑफ मेकिंग ए नेस्ट। आप अगर उस पर्टिकुलर पक्षी की घोंसला बनाना चाहो ना, आपको कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी परफेक्ट बनाने की, और वो पक्षी बिना किसी ट्रेनिंग लिए बनाता, उसकी उतनी जरूरत है, उसकी इंजीनियरिंग उतनी चाहिए, उससे ज्यादा उसको चाहिए। अटलांटिका में जो भालू मिलते हैं, सफेद भालू, तो 6 महीने दिन होता है, या जब भी जितने दिन तक प्रकाश रहता है तो बर्फ पिघलता है, तो जो मिलता है खा जाता है, फूल जाता है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब टेक्निकली इतना एडवांस नहीं था, धान गेहूं जो भी मक्का सब्जी उसको उगाते थे बारिश के मौसम या ठंड के मौसम के लिए, संभाल के रखते थे, सुखा के रखते थे, आजकल फ्रिज हो गया, फ्रीजर में रखते हैं, या अलग अलग तरीके से आप इसको सेव करते हैं। जानवरों में भी करते हैं, वो सफेद भालू की जो 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 है ना, जो एट्रिक एरिया में जो भालू मिलते हैं वो भी खाते हैं, उनकी उनकी भगवान ने उनके अंदर बना रखा है फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, 4-6 महीने तक जो मिलता है खाता है, खाते हैं, बाकी जो 4-6 महीने बर्फ से सब कुछ ढक जाता है, कुछ खाने को नहीं मिलता है, वो क्या करता है कि अपने अंदर जो खाना खाया था, जो चर्बी उसने फैट डेवलप किया था, उसी को वो मेल्ट करता रहता है, उसी से अपना भूख अपना एनर्जी को मेंटेन करता है। तो दुनिया में अगर किस हर प्राणी की अपनी विजडम है, अपनी अपनी टैलेंट है, उसके हिसाब से जितना उसको जीने के लिए जरूरत है वैसा ही है, इंसान के लिए भी वही है। तो ये टैलेंट हमने तो नहीं पैदा किया ना, पक्षी के अंदर नेस्ट बनाने की टैलेंट पक्षी ने खुद पैदा किया ना, अगर हम इतने इंटेलिजेंट है, अगर ह्यूमन बींग इतना इंटेलिजेंट है, तो वो कहीं पढ़ लिख कहीं से ट्रेनिंग लेकर के बना के लाया नहीं, टैलेंट तो हमें किसी ने दिया है, हमारे अंदर किसी ने इनबिल्ट बना करके छोड़ दिया, जब पैदा हुए हम टैलेंट लेकर पैदा हुए, विजडम लेकर पैदा हुए, वो जो टैलेंट हमारे अंदर है अच्छा काम बुरा काम करने के लिए, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है। और परमात्मा हमेशा हमारे अंदर बैठ के क्या बुरा है क्या अच्छा है ये भी वो इंस्पायर करता रहता है, अच्छा करो बुरा मत करो। इसीलिए परमात्मा का दूसरा नाम होता है अंतर्यामी। वो जो इनर जॉय या इनर सैड, जब भी आप कोई गलत काम सोचते हैं या गलत काम करते हैं या गलत काम बोलते हैं, जब भी इवन प्लान भी करते हैं विचार भी आता है, तो अंदर से कोई आपके अंदर डाउट्स पैदा करता है, डर पैदा करता है, गिल्ट फीलिंग पैदा करता है, शेम शर्म पैदा करता है या वर्सन पैदा करता है। ये अपने आप होते हैं ना, आप तो नहीं बनाते। आपको तो शर्म आने के बावजूद भी, मतलब हमें हमें शर्म आने के बावजूद भी हम कर पाए बैठने, हमें बुरा लगता है ये करना तब भी करते हैं। तो जब भी गलत काम हम करते हैं, कौन है जो हमारे अंदर वो शर्म डाउट वो डर इस तरह की चीजें लाता है, उसको हम नॉर्मली कहते हैं इनर वॉइस, हमारे अंदर की आवाज। वो इनर वॉइस ऋषि दयानंद कहते हैं वो इनर वॉइस और कोई नहीं, ये परमात्मा जो तुम्हारे अंदर भी है बाहर भी है, वो सब जगह है, तुम्हारे अंदर को भी जानता है। जब भी तुम्हारे अंदर कोई बुरा ख्याल आता है, वो उस बुरे ख्याल को तुम्हें फील कराने के लिए तुम्हारे अंदर वो नेगेटिव वो एटमोस्फियर पैदा करता है, जिसके कारण तुम्हें या तो शर्म आए या डर लगे या डाउट्स हो या नफरत हो, इस तरह की चीजें पैदा करता है। और जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो या अच्छा काम करने की सोचते हो या अच्छी चीजें बोलते हो, तुम्हें अंदर से बड़ा सुकून मिलता है, इनर जॉय जिसको कहते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलता मैं आज इतना खुश क्यों हूं, पर अंदर से आपको अच्छा लगता है। किसी गरीब को आपने हेल्प कर दिया, रियल नीडी को, कोई अंधे को आपने रास्ता पार कर दिया, किसी ऑर्फनेज में जाकर के गरीब बच्चों के साथ आपने कुछ हेल्प किया, आपने उन गरीब बच्चों को चेहरों को देखा जब आपने उनको हेल्प किया, जो भी आप अच्छा काम लाइफ में करते हैं कहीं भी, तो आपको अंदर से एक सुकून मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो खुशी कौन है, वो परमात्मा का द्वारा दिया गया वो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है जो तुम्हें एनकरेज करता है कि ऐसे ही काम करो। तो ये जो इनर अंदर की जो वॉयस है, अंदरूनी आवाज, वो आवाज किसकी है, परमात्मा की। कहते हैं ना परमात्मा की आवाज में आवाज नहीं होता, साउंड नहीं होता, वो साउंड नहीं होता, वो साइलेंट आवाज होता है। आप इसको फील करते हो, हर व्यक्ति बुरा या अच्छा करते समय उसको वो फील करता है। आप कहेंगे नहीं बहुत सारे लोग हैं जो इतने सारे पाप करते हैं गलत काम करते हैं, उनको कहां फील होता है कि माफिया हैं, बदमाश हैं, टेररिस्ट हैं, लोगों को मारते काटते हैं, उन्हीं के ऊपर चलते हैं, हाथ जोड़ के वहीं चाय पी लेते हैं, वहीं खाना खा लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो जो स्लॉटर हाउस में जो होते हैं बचर्स होते हैं, जो जानवरों को काटते हैं मारते हैं, जानवर चिल्लाते हैं सब कुछ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां अंदर की आवाज, हाँ उनके भी अंदर की आवाज आते थे, अभी भी आते हैं। शुरू शुरू में वो आवाज उनको सुनाई देते थे, जब भी पहली बार उन्होंने गलत काम किया, किसी को मारने की नुकसान पहुंचाने की गलत काम कोशिश किया, उनको भी अंदर से ये फील आया आया था जरूर कि ये अच्छा नहीं है सही नहीं है, वो गिल्ट फीलिंग वो फियर वो शेम सब आया था। पर ह्यूमन बींग है, इंसान इंसान है। जब आपके ऊपर दूसरे कोई दूसरे पर्दा गिर जाता है, लालच का पर्दा, झूठ का पर्दा, इल्यूजन का पर्दा, ब्लाइंड बिलीफ का पर्दा, गुस्से का पर्दा, शराब की पर्दा, अलग अलग चीजों के कारण जब आपके उस इनर वॉयस पर दब जाता है पड़ जाता है, तो फिर वो दबता जाता है दबता जाता है दबता जाता है, और आप गलत काम करते जाते हो। 2 4 5 साल के बाद आपकी इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है, वो इनर वॉयस पूरी तरह दबा हुआ होता है। बिल्कुल वैसे ही सपोज आपके कोई हीरे की कोई छोटा सा हीरा आपके पास था या सोना सा, बड़ा चमकीला होता है, कहते हैं हीरा इतना चमकीला है कि अगर छोटा सा हीरा रखो तो प्रकाश हो जाता है, लाइट हो जाता है। पर सपोज आपका हीरा कहीं गिर गया और वो मिट्टी के नीचे दब गया, और उसके ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा धूल जमते जा रहे हैं, जमते जा रहे हैं, जमता जा रहे हैं। 1-2 साल के बाद आप ढूंढने आते हो, ना हीरे के कारण कोई प्रकाश मिलता है, ना हीरा भी मिलता है। हीरा तो वहीं पर है, पर उसके अंदर इतने मोटे परत के जमीन पर धूल जमा हुआ है। यही है परमात्मा की आवाज, जो हम इनर वॉइस कहते हैं। हमारे अंदर तो वो है, हमें सुनाई देता था, पर धीरे धीरे हमने इतने धूल इकट्ठा किया, धूल इकट्ठा किया, वो होते हुए भी आप उसकी प्रकाश नहीं आता है, रोशनी नहीं आती। हम सब लोग जो जिन लोगों के उदाहरण देना चाहते हैं कि उनके अंदर इनर वॉइस काम नहीं करता, वो इसी तरह अपने डे टू डे लाइफ में इतने कवर अप करने कर किया जाने अनजाने में, इसी के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो परमात्मा सविता है, क्योंकि वो संसार को बनाता भी है, क्रिएटर भी है, मेकर भी है, सबका इंस्टिगेटर भी है, स्टिमुलेट भी करता है काम करने के लिए, अच्छा बुरा करने के लिए। स्पेशली इंसान के अंदर तो अच्छे और गुणों का फर्क बताने के लिए परमात्मा पूरा मैकेनिज्म बना रखा है। इसीलिए इस मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, हमें बुराइयों से हमारे से हटा लो, अच्छाइयों को हमारे अंदर ले आ। तो ये समझ में आया सविता देव। अगला सेंटेंस लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। विश्वानि दुरितानि परास्व, जो कुछ भी दुरित है, जहां भी दू लग जाए ना, संस्कृत में दुख को तो खराब होता है, दुख है ना, दुष्कर्म, दुष्ट, ये दू शब्द, दू एक प्रिपोजिशन है, मतलब प्रिफिक्स है, वो बैड सेंस के लिए यूज होता है। और उसका अपोजिट वर्ड क्या है, सु, प्रिपोजिशन, सुख, सुजन है ना, सु या सत। तो जो भी दुरित है, खराब, वो फिजिकली हो, मेंटली हो, या ओरली, जो भी मैं खराब काम करता हूं, मतलब मेरे अंदर खराब विचार आते हैं, या मैं खराब बातें बोलता हूं, या मैं मेरे से खराब काम होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उन सबको, विश्वानी सबको परास्व आप हटा दीजिए। देखिए, जीवन में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं या कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, उसके लिए दो रास्ता होता है। पहली रास्ता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, मेरे लाइफ में क्या क्या वीकनेसेस हैं। पहले तो इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जब वो मिल जाए तो उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, कैसे मैं इसको दूर करूं, पहली चीज। पर इतने में काम नहीं चलेगा, आप सारी बुराइयों को हटा दें, आपके अंदर आप कोई बुराई नहीं, या जिस तरह के काम आप करते हैं उस काम से रिलेटेड जो भी आपको लगता है नेगेटिव चीजें हैं, आपने उसको हटा दिया तो भी नहीं चलेगा। फिर उसके जगह जो आपके अंदर जो अच्छे गुण है या कम है या आपको चाहिए, उनको डेवलप करना होता है। जो अच्छे गुण है उनको मेंटेन करना होता है, अगर नहीं है उनको तो उनको इंक्रीज करना होता है या मेंटेन करना होता है, जो नहीं है उनको अडॉप्ट करके प्रैक्टिस करना होता है। ये इंट्रोस्पेक्शन सबके लिए जरूरी होता है ना, लाइफ में किसी ना किसी मोड पर हमें वो करना पड़ता है। हमारी कमी, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, उन कमियों को फाइंड आउट करना, ढूंढना, पता लगाना। और पता लगाने से काम नहीं चलेगा, मोस्ट ऑफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार होते हैं, उनको पता है कि मेरे में ये कमियां है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि उनके अंदर कोई कमी है, मतलब उनको ये हमेशा लगता है कि आई एम द राइट वन, मैं तो बेस्ट हूं। वो गाना है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो वो आई एम द बेस्ट वाले लोग होते हैं। उनको तो उनकी हर चीज में कमल का फूल बरसता है, उनसे तो कभी कोई गलती होती नहीं। अब ऐसे लोगों का ना, कोई बच्चे उनसे भी परेशान रहते हैं, उनके माँ बाप भी परेशान, उनके स्पाउस भी परेशान, उनके दोस्त भी परेशान, क्योंकि ये बेस्ट एंटिटी है ना, तो वो तो अलग बात है। पर ऐसे लोगों को आप आर्ग्यू करके, समझा बुझा के कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि दे आर द ही इज द बेस्ट। तो सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है कि अच्छा, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, कमी है, पर बहुत सारे कमियां हमें कभी पता नहीं चलता। देखिए, इंसान की एक बड़ा खूबसूरत, कहिए बदसूरत कहिए, जो भी कहिए, एक बड़ा अच्छी क्वालिटी है। और वो क्वालिटी क्या है, हम दुनिया के बारे में दूसरों के बारे में घंटों बता सकते हैं और अपने बारे में हम बहुत कम बताना क्या जानते ही कम। तो बहुत समझदार लोग हैं, थोड़ा वो जानते हैं कि ये मेरी कमियां है, ये मेरी अच्छाइयां है। मतलब बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, उसके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या अच्छे गुण है, पता ही नहीं, बुरा भी नहीं पता। इसीलिए वो मंत्र कहता है, अपनी अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, वो मैटेरियल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, या नॉर्मल अच्छे इंसान में बनना है, तो आपको सेल्फ स्टडी मतलब खुद को पढ़ना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत होती है। वो इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं। लोग बुरा मानते हैं अच्छे मानते हैं वो अलग बात है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं और मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। अगर अच्छाइयां है तो फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, या तो मैं उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूं जितना चाहिए, या मैं वो अच्छाइयां दब चुकी हैं किसी कारण से। बहुत सारे कारण होते हैं, सोशियल, फाइनेंशियल, मेंटल, बहुत सारे कारण होते हैं हमारी अच्छाइयां दब जाती हैं। अगर दब जाती हैं तो मैं क्या करूं कि मेरी अच्छाइयां मेंटेन भी बना रहे और इंक्रीज भी हो। और फिर मुझे ये भी फाइंड आउट करना की जरूरत है कि मेरे अंदर क्या बुरे गुण है, बुरे स्वभाव है, और मैं उन पर काम करूं। पहले तो पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है। जब कमी होगा, अच्छा पता हो जाने पर भी कोई फायदा नहीं है। पता जैसे बिल्कुल वैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ बीमारी है तो डॉक्टर दो चीजें करता है। पहले पता लगाता है आपके अंदर क्या बीमारी है, आपकी दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं, बिना टेस्ट करके दवाई नहीं देता। तो जब आपकी टेस्ट वगैरह हो गया तो पता चला कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और आप घर में बैठ गए कि नहीं हो गया आप, तो मुझे पता लग गया, तब भी कोई फायदा नहीं है। फिर आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, दवाइयां देगा, सर्जरी करना है तो सर्जरी करेगा, कोई एडवाइस देना है तो एडवाइस करेगा, काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग करेगा, कि जो प्रॉब्लम है तुम्हें पता नहीं था, पहले उसको फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट करने पर उसके ऊपर काम करना होता है। जब काम करते हैं तब जाकर के हमें उसके अचीवमेंट मिलता है। तो यही है प्रार्थना का, ये विश्वामी देव मंत्र का यही है कि मुझे जो भी बुराइयां हैं मेरे से हटा लो। ऐसा नहीं कि आपने कहा है प्रभु मेरी बुराइयों को हटा लो और परमात्मा आगे सीधे, जैसे एक भ्रम धारणा है कि भाई हमने प्रार्थना किया भगवान सामने आ गया। सब रिलीजन में गया है, आ गया सपने में, बोला बोलो बेटे क्या करूं जी, खाना बना नहीं है, मैं तुम्हारा भक्त हूं जरा खाना बना दो। अच्छा मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं इसको हटा लो। अच्छा मैंने निकाल के ले लिया, आप बोलो क्या करूं जो जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब अच्छा जॉब दे दिया, अब नहीं दिया तो कैसा नालायक भगवान, 10 साल से 20 साल से तेरी पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ा ही होता है। मंत्र में, किसी भी मंत्र में जहां आपको तो प्रार्थना दिखता है ना, प्रार्थना वाला आस्किंग समथिंग, वो एक्चुअली परमात्मा से प्रार्थना के लिए ये मंत्र नहीं लिखा गया। ये तो आपकी अपनी कमिटमेंट को मेक श्योर करने के लिए, मंत्र को समझने के बाद जो चीजें आप परमात्मा से मांगते हो परमात्मा आकर करने वाला नहीं है, पर समझने के बाद हमें पता चलता है अच्छा ये मेरा काम है कि मुझे अपनी बुराइयों को फाइंड आउट करना है, अच्छाइयों को पढ़ाना। इसके लिए हमें एफर्ट्स करना होता है, मंत्र का मतलब विचार होता है। तो क्या बुराइयां हैं, वैसे तो आप लिस्ट बनाए थे, हजारों लिस्ट बनेगा, पर हमारे शास्त्रों में कुछ बेसिक बुराइयां बताई, मतलब जो ओरिजिन सब बुराइयां है ना, तो उसको पतंजलि की भाषा में कहते हैं क्लेश मूल, सारे परेशानियों का जो जड़ है, वो कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, 10 है। तो जनरली लोभ, लोभ समझते हैं, ग्रीड, मोह, जो जो ब्लाइंड अटैचमेंट टू समथिंग, किसी चीज के प्रति बिल्कुल ब्लाइंडली अटैच हो देना, ईर्ष्या, किसी दूसरे की भलाई या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस देख करके जलन पैदा होना, जो एनवी है, असूया, किसी की भलाई देख करके जो जो जलन पैदा हुआ, जो जले से पैदा हुई, उस जेलेसी की जो बड़े भाई है उसको असूया कहते हैं। वो क्या होता है कि पहले तो अंदर जलन पैदा होगा, ठीक है, जेलेसी वैसे पॉजिटिवली भी यूज हो सकता है, नेगेटिवली भी यूज हो सकता है ना। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जेलेसी जरूरी होती है कि भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है तो मैं और वर्क करूं। तो जेलेसी को आप चैनलाइज करके अपने आप को डेवलप भी कर सकते हो। तो जेलेसी का जो नेगेटिव चैनल क्या होता है कि जेलेसी के कारण आप बुराई शुरू कर देते हो। अच्छा, ये बहुत बड़ा पैसा वाला, अच्छा चोरी किया होगा, कोई डाका डाला होगा, कुछ बेईमानी किया होगा, कुछ गलत काम किया होगा, क्योंकि मैं नहीं बन पाया तो फिर हमने हमने उनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। इसको कहते हैं असूया। इसी और सबसे बड़ा तो अहंकार, गर्व है ना, अहंकार समझते हैं ना, ईगो, वैनिटी, जिसकी हमारे लाइफ के मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम है, दुख है, ध्यान रखिएगा, जिसको हमारे शास्त्रों में आधी आधी आध्यात्मिक दुख कहते हैं, उसका जड़ हमारे वैनिटी, ईगो है ना। और उस ईगो का एक दूसरा वो क्या कहते हैं, स्टेप ब्रदर है, एक भाई है, कजन भाई है, उसका नाम है दंभ। दंभ मतलब एक होता है गर्व जो वैनिटी है, और दंभ है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी भी अहंकार पैदा करता है। और अहंकार फर्क क्या है, फर्क यह है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं उसका अकड़ता हूं, ये तो हुआ अहंकार। मेरे पास पैसा नहीं है तब भी मैं लोगों को दिखाता हूं कि मेरे पास बहुत पैसा है और उसमें अकड़ता हूं, वो है दंभ। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं और मुझे उसका अकड़ है, मैं बड़ा धार्मिक हूं, तुम सब पापी हो, नर्क जाओगे, मेरी तरह पूजा पाठ है वो सब नहीं करते हो, ये है गर्व। ज्यादातर रिलीजियस बाबा लोग, रिलीजियस लीडर इसी में आते हैं, करते हैं पूजा पाठ वगैरह, पर उसके कारण उनको अकड़ भी बहुत है, बड़े घमंडी बन जाते हैं, उनका घमंड आपको झलकेगा, उनकी हीरो ईगो आपको झलकेगा। पर दूसरा क्या है जो बाजार में इससे ज्यादा लोग मिलते हैं रिलीजन में, वो है पाखंडी। अंदर तो कोई पूजा पाठ भक्ति कुछ भी नहीं है, पब्लिक को दिखाने के लिए, सोशल अप्रिसिएशन पाने के लिए। 90% जो रिलीजियस पीपुल है दे आर दंभी, पाखंडी, मतलब अंदर से कोई श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, कोई फीलिंग नहीं। क्यों करते हैं, दिखाना है हम भी धार्मिक है। तो हर मामले में होता है ना। तो दंभ और गर्व में फर्क क्या है, एरोगेंसी और जो जो हिपोक्रेसी में फर्क है कि एक के पीछे कुछ तो सब्सटेंस है, दूसरे में वो भी नहीं है ना, खाली घड़ा बसता है, वो दोनों में बस इतना फर्क है। आलस्य, लेजीनेस, झूठा, जो जो झूठ बोलना, तो ये सब चीजें बुरी आदतें हैं। वैसे तो हमने 8-10 बताया, हम ढूंढे हमारे अंदर और भी 50 निकल सकते हैं कुछ चीज। ये तो खैर बेसिक कुछ बुराइयां हैं, पर जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, घर में होते हैं, फैमिली में होते हैं, संस्था में होते हैं, या कहीं भी प्रोफेशन में होते हैं, तो वहां के हिसाब से, कुछ टाइम और प्लेस के हिसाब से भी हमारा जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी कभी कभी बहुत सारी कमियां आती है। तो इन सब चीजों को फाइंड आउट करना। इसी तरह अच्छे गुण क्या है, अगला अगला मंत्र क्या कहता है, मंत्र का अगला भाव क्या कहता है, यद भद्रम तन्न आसुव। हे प्रभु, जो अच्छाइयां है वो मेरे पास भेजो, दुनिया में कहीं भी मिलता हो प्लीज मुझे एनकरेज करो, इंस्टिगेट करो कि वो सब चीजें मुझे मिल सके। अच्छाइयां क्या है, तो इसके लिए वैसे तो सबको पता है अच्छाइयां क्या है, पर एक लिस्ट गीता में 16 चैप्टर में, तो 16 चैप्टर का नाम है दैवासुर संपद। ये डिवाइन क्वालिटीज है, मतलब अगर ये क्वालिटी गुण किसी मनुष्य के अंदर रहे तो वो देव बन जाता है। और असुर गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण रहे तो वो राक्षस कहलाता है, मनुष्य या असुर कहलाता है। तो राक्षस क्या कहलाता है, 4-5 तो हमने डिस्कशन किया, जो बुरी बुरी चीजें हैं, वो बुरी बुरी चीजों को ही हम अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं, राक्षस गुण कहते हैं, असुर गुण कहते हैं। अच्छे क्वालिटी को हम धर्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं, या वर्च्यूज कहते हैं, दैव गुण कहते हैं, देवता गुण कहते हैं। तो बड़ी लिस्ट है, अच्छे देवता गुण क्या है, अभयम, फियरलेसनेस, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, अपने नॉलेज के प्रति ट्रस्ट हो, नॉलेज पाने की, ज्ञान पाने की इच्छा और उस ज्ञान पर टिके रहना, दानम देने की आदत, चैरिटी या डोनेशन, हेल्पिंग अदर्स, दमा सेंसेस को, अपनी माइंड को कंट्रोल करना, यज्ञ जो जो यज्ञ हम करते हैं, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करना, तपः अपने शरीर मन बुद्धि को किसी भी बुरे से बुरे हालत में लड़ने के लिए तैयार करना, आर्जवम जो सॉफ्टनेसनेस होता है ना, जो जो मॉडेस्टी होती है, अहिंसा किसी को नुकसान ना पहुंचाना, सत्य ऑनेस्टी, क्रोध गुस्सा ना होना, त्याग करना, शांति मन को हर परिस्थिति में कूल एंड काम रखना, अपयी शून्यम किसी की बुराई ना करना, दया काइंडनेस, कोई परेशान है दुखी है उसकी उसको उसके प्रति एम्पैथी दिखाना, और भूतेषु भूतेषु दया, कोई भी प्राणी हो उसके प्रति काइंडनेस दिखाना, अलोलुपत्वम लालच ना करना, मार्दवम जो मॉडेस्टी है, ह्री शेम, ये शेम भी एक क्वालिटी है, अगर शेम नहीं रहेगा हम कितने बुरे काम करते जाएंगे, ये भी भगवान के द्वारा दिया गया एक चीज है। अब बोलते हैं ना किसी को शेमलेस हो गया है, मतलब बुरे काम करते समय इसको कोई अंदर से वो फीलिंग नहीं आई, और अच्छा फलम जो फ्रिकलनेस ना होना, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें वो गीता में है, तो हम उसे डिटेल में नहीं जाते, भाव ये है इस तरह के अच्छे गुण हमारे अंदर पैदा हो, पैदा तो अपने आप नहीं होगा ना, दूर भी अपने आप नहीं होगा, ध्यान रखिए लाइफ में आप किसी भी मामले में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो आपका जस्ट आप चाहते हैं मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, या आप फाइनेंशियली सोशियली किसी भी स्पिरिचुअली पॉलिटिकली किसी भी एंगल से आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में भी आप अचीव करना चाहते हैं इंक्लूडिंग, तो आपको ये ढूंढना पड़ता है कि मैं ये प्रोफेशन के लिए फिट हूं कि नहीं हूं, मेरे अंदर ये गलत चीजें हैं जो मुझे फिट नहीं करता, ये अच्छी चीजें हैं जो मुझे फिट करता है, तो वो जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर मेरे अंदर ना हो, मेरे बारे में ध्यान रखिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेल्फ, दूसरों के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, अरे बस बोलते बोलते चलो, और हमारे खास करके जो एजुकेटेड हिंदू इंडियन लोगों की भी एक खूबसूरत माइंडसेट है, वो सबके सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, मैं साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल की बात कर रहा हूं, आप उनसे डिस्कस करो क्रिश्चियनिटी इस्लाम बुद्ध सब उनको ज्ञान होता है, आप पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करो सब पता होता है, क्या पता नहीं है उसको, खुद के बारे में बहुत कम पता है, खुद के देश की हिस्ट्री के बारे में खूब कम पता है, खुद की देश अपने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में खूब कम पता है, हम अपने बारे में बहुत कम जानते, दूसरों के बारे में बहुत जानते, कहीं भी कोई पढ़ा लिखा हिंदू इंडियन जो 10 लोग बैठे हो बात करते हो सुनो, वो सब कुछ पर बढ़िया बताएंगे, पर जैसे ही पूछो अपने रिलीजन के बारे में जो भी बताएगा वो 99 नहीं 100% गलत बताएगा, सुनी सुनाई बातें बताएगा, आपको बताओ कि भाई तुम जिस देश से बिलोंग करते हो इंडिया की उसकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, बताएगा अकबर शाहजहां वादा, कुछ नहीं पता उसको, चोल पता नहीं उसको, गंगोदेव पता नहीं, कुछ नहीं पता हमें अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स कुछ नहीं पता हमें अपने बारे में, नहीं पता, पर दुनिया के बारे में पूरा अपडेट रहते हैं, तो जब तक मुझे अपने बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग में दो चीजें आती है, मेरी क्या वीक पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और नंबर 2 मेरे अंदर क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है जिसको मुझे डेवलप करना है या मेंटेन करना है, कम से कम बढ़ाना नहीं तो मेंटेन करना है, जब ये दोनों पॉइंट्स पर आप काम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उस पर काम करते हैं, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सन, और जैसे कि लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत है, एक डिसिप्लिन की जरूरत है, यहां भी वही है, जिस दिन आपने सोचा कि मुझे मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं उन पर काम करना है या अच्छाइयां उनको डेवलप करना है, तो यू हैव टू मेक ए चार्ट, यू हैव टू मेक ए प्रॉपर प्लानिंग, और ध्यान रखिए ह्यूमन बींग की जो माइंड है वो 24 घंटे एक वार में रहता है, क्या अच्छाई और बुराई की लड़ाई हम सबके अंदर अंदर चलता रहता है ना। और वो तभी उस लड़ाई के आप जीत सकते हो जब आपके अंदर वो कन्विक्शन हो और आप अलर्ट 24 घंटे रहते हो, और वो अलर्टनेस साइमल्टेनियसली दोनों साइड में होना चाहिए। पतंजलि योग में लिखते हैं जो मन है उभयतो वाहिनी चित्तवृत्ति, मन जो आपका माइंड है एक ही टाइम पर दोनों दोनों साइड में बहती है। कहते हैं कल्याण वहा पाप वहा, मतलब आपके माइंड में एक ही समय में बुरे विचार भी आते हैं अच्छे विचार भी आते हैं। आप कोई काम करने जाते हो उसके पॉजिटिव भी सेंस आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। तो आपको जब भी काम करना होगा अपनी अच्छाई बुराई के ऊपर साइमल्टेनियसली करना होगा, बुरी चीजों को आइडेंटिफाई करना है हमें और उस पर काम करना है कैसे कंट्रोल पाया जाए, हमारी अच्छी चीजों को फाइंड आउट करना है उनको पॉलिश करना है तो पॉलिश करो, उनको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाओ। जब आप दोनों को साथ साथ करते हो तब लाइफ में अचीवमेंट होता है। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का यही मंत्र हमें यही बताने की कोशिश करता है। नंबर टू, ये मंत्र सिर्फ का भाव सिर्फ रिचुअल नहीं होता है, ये एक तरह की हमारी कमिटमेंट है कि मुझे ऐसा ही करना है। जब भी आप भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं उसका रियल सेंस होता है कि मुझे ये अचीव करना है और उसके लिए मुझे ऐसा करना है। बाकी जब आप सचमुच उसके लिए काम करते हैं परमात्मा आपके साथ है, जरूर साथ देता है। टेम्पटेशंस आएंगे आपको उस गलत काम को करने के लिए, है ना, जब आप उसको फाइंड आउट करते हो उसको रोकते हो कंट्रोल करते हो तो फिर अच्छे गुणों को बढ़ने के लिए मौका मिलता है। अच्छे गुण बढ़े बुरे गुण घटे, इसी से ही सबका लाभ होता है। एक खूबसूरत श्लोक आपके सामने बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो सकता है पर ये सुभाषित है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मना संयम सया भूमितलं दिशोपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम एते कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। लास्ट लाइन देखता है, कहता है मित्र दोस्त जिसके ये सब फैमिली मेंबर्स हो उसके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगा? कौन है फैमिली मेंबर्स? जिसका पापा धैर्य हो परेज हो, क्षमा जिसकी माँ हो, शांति जिसकी परमानेंट लाइफ पार्टनर हो, पति या पत्नी जो भी हो शांत है ना, सत्य जिसका दोस्त हो, काइंडनेस जिसकी बहन हो, मन को कंट्रोल करना जिसका भाई हो, जमीन पर सोना जिसका जमीन जिसका बिस्तर हो, दुनिया जिसका सारा संसार जिसका सोने का पेड़ हो, ज्ञान जिसका खाना हो भोजन हो। बताओ ऐसे व्यक्ति के अगर ऐसे रिश्तेदार हो वो कभी जीवन में दुखी हो सकता है? इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आगे अगले मंत्र को लेकर आएंगे। थैंक यू।